फिर अगला आप देखिए टॉपिक क्या है, हर काम का एक वक्त है, इसको नोट करें, ये भी अब हमारी बहुत मिसमैनेजमेंट होती है, हर काम का एक वक्त है इसको भूल जाते हैं, कैसे आइए पढ़ते हैं। मोमिन को चाहिए कि वो वक्त के मुतालिबात को पहचाने, कि इसकी ज़ुबानों कल्ब और अज़ौ जवारे किस समल के तालिब हैं इसकी जस्तजू में रहे, इसको बर वक्त अंजाम देने की कोशिश करे ताकि मुनासिब तरीके से अपने मकसूद को हासिल कर सके और अल्लाह ताला के नज़दीक कबूलियत का दर्जा पा सके। आप देखिए मसलन मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, मुझे दिन का सुबह का हिस्सा बहुत कम घर में रहने का मौका मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह वीकडेज़ हो या वीकेंड सुबह के वक्त में रोज़ ही घर से निकलना होता है क्लास के लिए, कभी किसी दिन जैसे संडे को मौका मिल जाता है कि दर्स शाम का है तो सुबह में नहीं गए। मैंने देखा है सुबह के वक्त जो काम करने का मूड होता है ना, ख़ास तौर पर सफाई सुथराई और कपड़े धोने, ये बाद में नहीं बनता। मैं वाकई सोचती हूँ कि जो ख़वातीन घर में रहती हैं फिर उनका तो शुगल ही है, अब शाम में टाइम है मूड नहीं हो रहा, अब कौन फैलाए, अब कौन इस वक्त झाड़ पूछ करे और क्या करे, मट्टी तो नज़र ही नहीं आनी। तो आप देखिए कि अगर आप हर काम का वक्त मुकरर कर लेना तो एक तो आप मुतमईन रहेंगे और अगर शाम हो गई अब आप कर नहीं सकते ना इस वक्त कुछ तो दिमाग से उतार दें, कल सोचूंगी। ये जो हर वक्त दिमाग पे सवार है ना और अभी मेहमान खा नहीं रहा और प्लेट उठा के धोने लग दें और ग्लास के ऊपर नज़र रखें तो वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा। बस ख़वातीन काम के नशे में दूसरों को शर्मिंदा ही करती रहती हैं, सुबह से काम कर रही हूँ अब ये करके बैठूँ, अच्छा किचन साफ़ करके बैठूँगी, यानी आप जाएँ हमारी जान छोड़ें और हम अपना काम करें, ये भी अच्छा आदत नहीं है। देखिए घर हैं बुत नहीं है, इनको मत पूजे, ये आपकी खिदमत के लिए हैं, आप इनकी खिदमत के लिए नहीं हैं। तो अच्छी होती है सफाई सुथराई काम करना कराना, लेकिन वक्त पे काम करें, जो वक्त गुजर गया अब उसके बाद रिलैक्स हो, अब कल देखेंगे जो भी होगा। इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना जानशीन बनाते हुए ये वसीयत फरमाई थी कि जान लो अल्लाह के लिए कुछ काम दिन में करने के हैं जिनको वो रात में कबूल नहीं फरमाता और कुछ काम रात में करने के हैं जिनको दिन में कबूल नहीं फरमाता, बल्कि अहम बात यह है कि मुनासिब काम मुनासिब वक्त पर अंजाम दे। इसी बात को जहन नशीन कराने के लिए अल्लाह ने बहुत सी इबादात और फ़राइज़ को औकात के साथ महदूद कर दिया, जिसमें तकदीम व ताहीर यानी वक्त से पहले या वक्त से पीछे करना जायज़ नहीं, और ये कि कोई अमल ना अपने महदूद वक्त से पहले कबूल होता है ना बाद में। नमाज के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है सूरत निसा 103, नमाज दर हकीकत ऐसा फ़र्ज़ है जो पाबंदी वक्त के साथ अहले ईमान पर लाजिम है। देखिए हिकमत है ना, मगरिब की नमाज़ के इतना थोड़ा वक्त क्यों है कि नहीं पढ़ो इसी के अंदर पढ़ो, जोहर का बहुत लंबा वक्त है, फजर का मुनासिब सा वक्त है, ईशा के लिए भी दरमियाना सा टाइम है, क्योंकि हर काम को उसके वक्त पे करना इंसान सीखे। और रोज़े के बारे में क्या है सूरत बकरा 185, वमन शहीद मिनकुम अश्शहर फलयसुम हो, जो शख्स इस महीने यानी रमज़ान को पाए इस पर लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे। अब 11 महीने जितने मर्जी रोज़े रख लें लेकिन वो रमज़ान में रखे हुए रोज़े का बदल तो नहीं है ना, यही मुराद है इससे। इसी तरह हज के लिए कहा अल हज अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मालूम है सूरत बकरा 197, और ज़कात के लिए फरमाया व आतु हक्कहु यौम हसादी ही, और अल्लाह का हक अदा करो जिस दिन फसल काटो। उशर के बारे में यह आयत है सूरत अनाम 141 में। दिल का अमल भी ज़ुबान के अमल की तरह है, इसलिए इसको भी इसके वक्त पर ही अंजाम देना ज़रूरी है। एक बुज़ुर्ग का कौल है, इसको हाईलाइट कीजिएगा, बंदे के औकात चार किस्म के हैं, इनमें पांचवी किस्म नहीं है। कौन सी चार किस्में? नेमत, मुसीबत, इतात और मासियत। और तुम्हारे ज़िम्मे अल्लाह के लिए हर वक्त में बंदगी का एक हिस्सा है जिसे तुम्हें इसकी मर्ज़ी के मुताबिक अंजाम देना होगा। क्या पता चला कि चार किस्म के औकात तो होंगे, नेमत मिली अल्लाह को याद करें अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, मुसीबत आई इन्ना लिल्लाह बोलिए, इताअत का मौका आया समय ना व ताना कहें, मासियत का मौका आया कहा मैं नहीं करूँगा ये काम, यानी हर हाल में अल्लाह को याद रखें। जिसका वक्त इताअत व फरमा बरदारी में गुजरे इसका शेवा ये होना चाहिए कि वह अल्लाह का एहसान मंद हो कि इसने इसे अपनी इताअत के कामों की हिदायत दी और इनको अंजाम देने की तौफीक बख्शी। और जिसका वक्त नेमतों में गुजरे इसका शेवा शुक्र है, और शुक्र दरअसल अल्लाह ताला से खुश दिलाना ताल्लुक़ का नाम है। हाईलाइट करें, शुक्र क्या है? आप अल्लाह से खुश हैं, खुश दिली से जिए, क्यों रोए धोए रहते हैं, आप क्यों दुखी हैं, आप क्यों परेशान हैं, कहा करें अल्लाह आपका कितना शुक्र है, आपने मुझे कितनी प्यारी ज़िंदगी दी, मुझे कितने अच्छे बच्चे दिए, मुझे कितना अच्छा शौहर दिया, तो खुश खुश रहने का नाम शुक्र है। इसी तरह जिसका वक्त अल्लाह की नाफरमानी और मासीत में गुजरे इसे तौबा और इस्तगफार करना चाहिए, اور جس کا وقت مصیبت میں گزرے اسے صبر اور رضا کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ رضا دراصل نفس کا اللہ سے راضی ہونا، اور صبر دراصل اللہ کے حکم پر ثابت قدمی اور استقامت کا نام ہے۔ تو آپ بتائیے، میں اور آپ ان چاروں کیفیات میں سے کیا اللہ کو یاد نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ تو خوشی غم یہ صرف دو مختلف نام، دو مختلف باتیں، اصل میں اس کے بعد ایک رویہ ابھرتا ہے، اس رویے پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو کچھ بزرگ نے کہا وہ حقیقت میں قرآن و سنت کی سچی تعبیر ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقام اطاعت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ یونس آیت 58، اور یہی آیت ہمارے نور القرآن کے لوگوں میں بھی ہے، اور بینر پہ اگر آپ دیکھیں ویب سائٹ پہ تو یہی آپ کو لکھی دکھے گی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون۔ اے نبی کہیے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز یعنی قرآن اس نے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ کیا سمیٹ رہے ہیں لوگ اس وقت بھی؟ یا کما رہے ہوتے ہیں، یا پھر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یا بنا رہے ہیں، یا خرید رہے ہیں، یا پکا رہے ہیں۔ اور مقام نعمت کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرمایا، کلو من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ و رب غفور۔ سورۃ سبا 15 بڑی پیاری لگتی ہے مجھے، ترجمے پہ غور کیجئے گا، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ، یہ پاکیزہ شہر ہے اور پروردگار ہے بخشنے والا۔ یعنی کہ پروردگار ہے پکڑنے والا، پروردگار ہے تمہیں سزا دینے والا، رب غفور۔ یہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، نعمتیں بھی اتنی دی اور ساتھ کہتا ہے کوئی بات نہیں، گناہ ہو جائیں گے تو میں تو تمہیں معاف بھی کر دوں گا۔ اسی طرح سورۃ زمر میں مقام معصیت یعنی گناہ کے مقام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، زمر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میرے بندو، دیکھیے اللہ کن کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے؟ حاجیوں اور نمازیوں کو نہیں، الذین اسرفوا۔ صحابہ کہتے ہیں جتنی خوشی اس آیت کو سن کر ہوئی اس سے زیادہ پہلے نہیں ہوئی۔ کیا؟ کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، کس طرح؟ گناہ کر کے۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ ہے اس سے پیار زیادہ کرنے والی کوئی ہستی؟ وہ تو ہماری غلطیوں پہ بھی ہمیں تسلیاں دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کبھی بچہ کوئی غلطی سے بھی غلط بات کر دے تو ماں اس کا منہ چوم لیتی ہے، میرے بچے سے یہ ہوگا، میرا بچہ چلتے چلتے گر گیا۔ تو یاد رکھیے، آپ کا رب آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ سرکش نہ ہو، تکبر نہ آئے، اس کو فراموش نہ کریں، وہ آپ کی انشاءاللہ چھوٹی بڑی خطاؤں کو بھی معاف کرے گا۔ اللہ جل شانہ نے آزمائش اور مصیبت کے وقت ایک مومن کے کردار کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی، سورۃ بقرہ 155-156، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کا نام لکھ لیں، مصائب خمسہ۔ پانچ مصیبتوں میں ایک تو کوئی نہ کوئی آتی ہی رہتی ہے اکثر۔ کیا؟ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹوں میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو۔ اور صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی روایت نوٹ کیجئے، یاد کی جا سکتی ہے، بہت کامن حدیث ہے لیکن واقعی پوری زندگی کا خلاصہ ہے ایک مومن کی۔ کیا؟ عجب لامر المومن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لیحد الا للمومن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وَإِنَ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، بلا شبہ اس کی ہر روش اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے مخصوص ہے۔ اگر وہ خوشحالی سے ہم کنار رہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے اور اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ بدحالی سے دو چار ہے تو صبر سے کام لیتے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ کیا پتہ چلا؟ خوشی اور غم امتحان کے دو پرچے ہیں۔ کچھ غم کے پرچوں میں پاس ہو جاتے ہیں تو خوشیوں میں ناکام، اور کچھ کا معاملہ الٹ ہے۔ हमेशा हर हाल में अल्लाह की रज़ा ढूंढें, खुशी आए तो उस खुशी में शुक्र के सजदे, शुक्र की वजह से अल्लाह की रज़ा के काम करें, अल्लाह की उन नेमतों को इंजॉय करें, और गम का वक्त आ जाए तो दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, खुशियों में अल्लाह को नाराज़। हमारी खुशी पूरी नहीं होती जब तक अल्लाह ना नाराज़ हो, और हम अपने ज़ुबान हाल से कह रहे होते हैं लो शादी के मौके पे ये नहीं करोगे, शादी पे अल्लाह को नहीं नाराज़ करोगे तो और कब करोगे। अल्लाह हमारी सलाह फरमा दे। अगला पॉइंट है अफजल वक्त की तलाश। हर चीज़ का एक अफजल वक्त होता है, फिर उसके बाद तो बाकी आम रह जाते हैं। जो लोग नेकी के कामों में सबकत के दिलदादा हों, खुद से पूछिए क्या नेकी के कामों में सबकत की दिलदादा हो गई हूँ, क्योंकि यही पढ़ रहे हैं हम इस किताब में, नेकियों के मौाक़े को गनीमत जाने। इन्हें चाहिए कि इन औकात की तलाश और जस्तजू करें जिन्हें अल्लाह ताला ने रूहानी खसूसियात से नवाजा, और इनके ज़रिए ने दूसरे औकात पर फजीलत बख्शी है। अहदीस में इन मुबारक औकात की निशानदही भी की गई है, और ये इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है कि वह अपनी रहमत से जिसको चाहता है ख़ास करता है और जिसको चाहता है आम कर देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत कसस आयत 68, व रब्बु का यखलुकु मा यशाउ व यख्तार मा काना लहुमुल खियरा। तेरा रब पैदा करता है और जो कुछ चाहता है, और वो खुद ही अपने काम के लिए जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। ये इंतखाब लोगों के करने का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने सहर के औकात को रात पर फजीलत बख्शी, और ये रात का आखिरी तहाई हिस्सा है। इसमें अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर जलवा फरमा होता है और पुकार कर कहता है, कभी आप और मैं इस पुकार को अगर सुने और खुले आसमान के नीचे ज़रा रात गुजार के तो देखें, आपको लगेगा बिल्कुल आपकी छत के ऊपर से कोई पुकार रहा है। क्या हल में मुस्तगफिर है कोई मगफरत चाहने वाला कि मैं उसको बख्श दूँ, हल मिन ताइबिन है कोई तौबा करने वाला कि इसकी तौबा कबूल करूँ, हल मिन साइलिन है कोई मांगने वाला कि इसे दूँ, हल मिन दाइन है कोई पुकारने वाला कि इसकी सुनूँ, हत्ता यन फजिरल फजरू। ये सिलसिला तलुए फजर तक चलता रहता है, और हम उसी वक्त सोते हैं रात भर जाग जाग के। तो कभी एक रात या रात का कुछ हिस्सा खुले आसमान के नीचे कान लगाकर इन पुकारों को सुने, और फिर अल्लाह से दुख सुख कीजिए। और ये जो हदीस थी हमने जो भी पढ़ी, ये सही मुस्लिम की रिवायत है 758 नंबर। इसी तरह अल्लाह ताला अपने परहेजगार और नेकुकार बंदों की सिफत बयान करते हुए फरमाता है सूरत ज़ारियात आयत 15-18, 15-18, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून आखिज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानु क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन कानु क़लीलम मिनल लैल मा यहजाउन वबिलअस्हारिहुम यस्तग़फिरून। अल्लाह हमें ऐसा बना दे। बिलाशुबा मुत्तकी लोग उस रोज़ बाग़ों और चश्मों में होंगे, जो कुछ इनका रब इन्हें दे रहा होगा इसे खुशी खुशी ले रहे होंगे। मेहनत की हो तो फिर पे लेने में या इनाम लेने में इंसान को कोई शर्म नहीं होती। वजह क्या है, क्यों अल्लाह इतना दे रहा है और वो इतनी खुशी से ले रहे हैं? कहा वो इस दिन के आने से पहले नेकूकार थे। हम कहते हैं वो दिन आएगा फिर नेक हो जाएंगे। रातों को कम ही सोते थे, और जाग के करते क्या थे? सिर्फ जागना मकसूद नहीं है, जाग कर करते क्या हैं? और रात को पिछले पहरों में माफ़ी मांगते थे। अल्लाह हमें भी ऐसे ही बना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्रबु मा यकूनु रब्बु मिन अल-अब्दि फी जौफिल लैलिल आखिर फइन इस्तता अन तकूना मिम्मन यज़कुरुल्लाह फी तिल्का साअति फकुन। अल्लाह अपने बंदे से सबसे ज़्यादा करीब रात के आखिरी हिस्से में होता है। अगर तुम इन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो इस वक्त में अल्लाह को याद करते हैं तो हो जाओ। क्यों इस वक्त? क्योंकि इस वक्त दूसरे हमसे दूर होते हैं। आप देखिए लोगों के झमेले में रब याद नहीं रहता। तन्हाई में किसी से बात करने का एक अपना ही मज़ा होता है ना। सबके बीच में कोने में बैठ के बातें भी करें ना तो बार बार तवज्जो भटकती है। दिन में भी रब को याद करें पर कुछ घड़ियां रात की अकेले में, चाहे घड़ी हो 5 मिनट की, खिड़की खोल के आसमान के नीचे खड़े हों, अपने इंटेलेक्ट को बुलंद करें, अल्लाह के साथ अपना रब्ता जोड़ें, और वहाँ बैठकर सारे दिन की अल्लाह से प्लानिंग ले लें, और जो शिकवे गम दुख लोगों से मिले वो अल्लाह से जाके बात कर लें। आप देखेंगे आपका दिल हल्का हो जाएगा। اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت بخشی، یہ مسلمانوں کے لیے ہفتے کی عید ہے، اسی دن جمعے کی فرض نماز اور مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور اسی میں گھڑی مقبولیت کی ہے، جو مسلمان اس میں خیر کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 935 نمبر کی اور مسلم میں 852. صحیح حدیث میں کہ جو شخص اول وقت میں نماز جمعہ کے لیے مسجد جاتا ہے تو اسے اونٹ کی قربانی کا اجر ملتا ہے. کتنے کا آتا ہے ایک اونٹ آپ کو اندازہ؟ پاکستان میں عید الاضحیٰ پہ آپ نے کبھی اونٹ ذبح کرا؟ 1 لاکھ سے زائد کا ہوتا ہے، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ. کوئی 1.5 لاکھ کرے تو میرا خیال ہے آپ کے یوروز میں 1000+ یوروز ہوں گے. کون ہے جو ہر جمعے 1000 یورو صدقہ کرے؟ صرف اپنے مردوں کو یہ حدیث بتا دیں کہ جمعے کی نماز کے لیے اول وقت جائیں، اور جو اس کے بعد گیا تو اسے گائے کی قربانی کا اجر ملے گا، اور جو اس کے بعد گیا تو گویا اس نے بکری قربان کی، یہاں تک کہ مرغی اور انڈے کی نوبت آتی ہے، اور جب خطیب ممبر پر چڑھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں. آپ نے اپنے مردوں کے ساتھ اس حدیث کو شیئر کرنا ہے، بیٹوں سے، شوہر سے، باپ سے، بھائیوں سے. اور روایت بہت معروف ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے 881 نمبر اور مسلم میں بھی 850 نمبر کی ہے. آپ دیکھیے کہ ہم ہمیشہ دور کی نیکیوں کے لیے ترستے ہیں، اور جو ہاتھ کی نیکیاں اس کی کیئر ہی نہیں کرتے. کعبہ جانے کے لیے روئیں گے کیونکہ اس میں 5000 یورو دینا پڑنا ہے، لیکن یہاں بیٹھ کے 5 وقت کی نماز مسجد میں نہیں پڑھنے آئیں گے. ہمارا یہ حال ہے، روزے کی جالیوں کو چھومنا چاہتے ہیں لیکن نبی کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں. تو رسمی نیکیاں کرنا بہت آسان ہے، اللہ ہمیں شعوری طور پہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے. تو اب جمعے کے بعد ایک اگلی چیز کیا ہے؟ حج. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے ایام میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو فضیلت بخشی ہے، اور ان میں سے بھی سب سے افضل عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا دن ہے، بلکہ یہ بالاتفاق سال کا سب سے افضل دن ہے. کیوں بھلا؟ اس ایک دن میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو گناہوں سے معاف کرتا ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کو سارے دنوں سے زیادہ پسند ہیں. لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، ولل جہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء. سبحان اللہ. فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ یہ کہ آدمی اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان میں سے کچھ واپس لے کر نہ لوٹے. یہ بخاری کی روایت ہے 969 نمبر کی. آپ بتائیے، یہ 10 دن ہر سال آتے ہیں، اب پھر آنے والے ہیں 1.5 مہینے میں. پکڑ لیجئے، ابھی سے نظر رکھیے ان 10 دنوں کی نیکیوں کو سنبھالنا انشاءاللہ. مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو فضیلت عطا کی ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق کو باطل کا فرق کرنے والی ہیں. اسی میں روزہ فرض کیا گیا اور قیام اللیل کو مسنون قرار دیا گیا. اس مہینے میں نیکیوں کی کثرت مستحب ہے، یعنی ریکمینڈیڈ ہے، پسندیدہ ہے. یہ مہینہ مومنوں کے لیے فصل بہار، صالحین کے لیے موسم تجارت، اور نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کے لیے میدان مسابقت ہے. ہمارے بزرگ اس ماہ مبارک کی آمد کا انتظار بڑے جذب و شوق سے کیا کرتے تھے، اور جب یہ مہینہ آ جاتا تو کہتے تھے، خوش آمدید اے پاک کرنے والے، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا تھا کہ وہ اس ماہ مبارک کے ذریعے اپنے ایوب کی گندگی دھو لیں گے اور گناہوں کی نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں گے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جس نے حج نہیں کیا وہ دعا کرے کہ اللہ حج کی توفیق دے، اور ابھی تو رمضان نیا نیا گزرا ہے، دعا کریں کہ اللہ ہمیں اگلے سال کے رمضان تک بھی زندہ رکھے اور بہترین طریقے سے اس کی خیر کو سمیٹنے والا بنا دے. عبادہ بن ثابت سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رمضان کی آمد پر فرمایا، اتاکم رمضان شہر برکت فیہ خیر یغشیکم اللہ فی فتنزل الرحمہ وتحط الخطایا ویستجاب فیہ الدعا فینظر اللہ الی تنافسکم ویباہی بکم ملائکتہ فآر اللہ انفسکم خیرا فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ عز وجل. تمہارے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تمہیں ڈھانپ لیتا ہے और अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है, गुनाहों को माफ़ फरमाता है, दुआएं कबूल करता है, नेकियों के मामले में तुम्हारे जज्बे मुसाबकत को देखता है और अपने फरिश्तों पर फ़ख्र करता है। तुम अल्लाह को अपनी तरफ से ज़्यादा खैर दिखाओ। कितना प्यारा जुमला है। इसलिए कि वो आदमी इंतहाई बदबख्त है जो इस महीने में अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। अगरचे रमज़ान का पूरा महीना अहमियत का हामिल है, लेकिन इसका आखिरी अशरा दो असबाब से इंतहाई अहम है। अव्वल, ये महीने का आखिरी हिस्सा है और आमाल का एतबार खातिमों पर यानी ख़वातीम पे है। अल्लाह के नबी ये दुआ मांगा करते थे, और इस शऊर से कि हमारी भी ये दुआ कबूल हो, आइए हम भी मांगते हैं। अल्लाहुम्मा जअल खैर उम्री आखिरहू व खैर अमली ख़वातिमहू व खैर अय्यामी यौम अलकाक। एक एक लफ्ज़ पे आमीन कहिए कि अल्लाह मेरी आखिरी उम्र को बेहतर बना दे। आप देखिए, जवानी तो अक्सर ही लोगों की अच्छी होती है, बुढ़ापा अल्लाह की बना। खुशकिस्मत वह हैं जिनकी ज़िंदगी का आखिरी दौर खूबसूरत हो। और मेरे आखिरी अमाल को बेहतर बना दे, और मेरा बेहतर दिन अपनी मुलाकात के दिन को बना दे। जिस दिन अल्लाह से मुलाकात हो, वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। यह हदीस अल तबरानी में है, 157 जिल नंबर 9 में हदीस है, 9411 नंबर की। अब आप देखिए कि ये जो बात है ना कि मेरा आखिरी अमल बेहतर हो, तो यहाँ एक सवाल ख़ुद से पूछें, रात को सोने से पहले आखिरी काम क्या करती हूँ? अब देखिए, सारे दिन की खैर है और आखिरी वक्त कोई गुनाह करके, गलत चीज़ सुन के देख के सो गए, तो सारे दिन की नेकियाँ ज़ाया हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। और सोचिए, जिस दिन अल्लाह से मुलाकात होनी है, अगर वो दिन नाराज़गी वाला दिन हुआ तो क्या बनेगा? अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। तो पहली वजह क्या है कि रमज़ान का आखिरी अशरा है, अब रमज़ान जा रहा है। दूसरा, इस अशरे में शब कदर का यकीन होता है। ये वो रात है जिसे अल्लाह ताला ने हज़ार महीनों से बेहतर बनाया, और इसकी फजीलत में ये मुस्तकिल एक सूरत सूरतुल कदर नाजिल फरमाई। नसे कुरानी से रमज़ान में इस रात का होना यकीनी है, और अहादीस में भी रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कदर को तलाश करने का हुक्म दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब रमज़ान के आखिरी अशरे में दाखिल होते तो चाको चौबंद होते, शब बिदारी करते और अपनी अजवाज मुतहरात को भी जगाते और एतिकाफ़ भी फरमाते। अल्लाह ताला ने महीनों में रमज़ान के बाद हुरमत वाले महीनों को फजीलत दी। यानी अब टाइम के साथ देख रहे हैं ना कि हर चीज़ अपने वक्त पे ही अच्छी होती है। और वो चार महीने कौन से हैं हुरमत वाले? रजब, ज़िलक़ादा, ज़ुलहज्जा और मुहर्रम। रजब, ज़ुलक़ादा, ज़ुलहज्जा और मुहर्रम, अल्लाह ताला इनके बारे में सूरत तौबा 36 में फरमाते हैं, इन इद्दत शुहूर इंदल्लाहि 12 शहर फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अरबतुन हुरम ज़ालिकत दीनुल क़य्यिम फ़ला तस्लिमू फ़ीहिन्न अन्फुसकुम। हकीकत यह है कि महीनों की तादाद, जब से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, अल्लाह के नविश्ते में 12 ही है। इनमें से चार महीने मुहतरम हैं, यही ठीक ज़ाबता है, लिहाजा इन चार महीनों में अपने ऊपर ज़ुल्म ना करो। अपने ऊपर जुल्म करना हर महीने में ही हराम है, लेकिन इन महीनों की हुरमत की वजह से नफ्स पर जुल्म का गुनाह भी बढ़ जाता है। तो क्या पता चला फिर, खुलासा क्या हुआ? यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ कि मोमिन की जिम्मेदारियाँ क्या हैं औकात के बारे में। पहली बात, वर्क से इस्तफादे की हिरस हो। आप और मैं अपना मुहासबा करते हैं, क्या मैं अपने वर्क से फ़ायदा उठाने की हिरस रखती हूँ? दूसरी बात, वक्त पास करने वाले नहीं बनना, ज़िंदगी को मत ऐसे गुजारिए कि बस गुजर जाए। तीसरी बात हमने पढ़ी कि खाली वक्त को गनीमत जानी है, छोटे छोटे चंक्स हैं ना जो टाइम के, इसकी हिफाजत करें। और हमने तो लम्हों की हिफाजत करनी है। हमारी ज़िंदगी अल्लाह के हाँ सांसों में लिखी हुई है। हर सांस का हक देने के लिए कम अज़ कम दो नेकियाँ करनी पड़ेंगी, एक सांस के अंदर जाने का शुक्रिया और एक सांस के बाहर आने का शुक्रिया। फिर चौथी चीज़ इसमें देखी कि खैर के कामों में सबकत लेनी है, इंशाल्लाह इरादा करें, बढ़ के नेकियां करें। अबू बकर उमर एक दूसरे से आगे बढ़ते थे, आज मैं और आप क्यों नहीं बढ़ते? हम तो एक भी नहीं बढ़ता, और एक को देखकर दूसरा बढ़ जाए, दूसरे को देख के तीसरा बढ़े। देखिए नेकियां कैसे होती हैं, हमारे सामने नेकियों के मौके पड़े होते हैं, हम कहते हैं छोड़ो मैं क्यों करूँ, कोई और कर लेगा। फिर इसी तरह आप देखिए, मरूर अय्याम से इबरत लेनी है। ज़िंदगी में जो वाक़ात हालात हम सब के साथ यूनिवर्सली हो रहे हैं, कहीं अकेले में हो रहे हैं, इनसे इबरत लेना। फिर अगली चीज़ हमने पढ़ी कि औकात की तंजीम करनी है, वक्त को ऑर्गेनाइज करना है, और फिर पढ़ा कि हर काम का एक वक्त है और ख़ास तौर पे अफजल वक्त की तलाश। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये टॉपिक पूरा हुआ। अब अगला हिस्सा जो है ख़ास तौर पे इसमें हमारी ज़िंदगी में जो औकात हैं, जैसे मोमिन की सुबह कैसी हो, शाम कैसी हो, दोपहर कैसी हो, फिर बंदे के 10 हकूक, फिर सोते वक्त के कुछ अज़कार हैं। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक हैं, लेकिन ये फ़ायदा कब देंगे जब हम इससे फ़ायदा लेना चाहेंगे। चलिए, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।